ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार जातीय छुआछूत और सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन, सामाजिक विघटन पैदा करने और चरित्र हनन जैसे अपराधों पर नियंत्रण की जरूरत पर गृह मंत्री रमेश लेखक ने दिया जोर। शिक्षक रिक्तियों की समीक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन कर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षा विज्ञान तथा विधि मंत्री विद्या भट्टराय ने दी जानकारी। और भारत के मुंबई में यात्रियों से भरी नाव पलटने से हुई 13 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि राजनीतिक भ्रम, अस्थिरता और भ्रष्टाचार के सीमा पार करने के बाद दो प्रमुख दलों के सहयोग से नई सरकार का गठन करना पड़ा। नेपाल उत्पीड़ित जाति मुक्ति समाज के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में नेकपा एमाले के अध्यक्ष समेत रहे प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और सुशासन बनाए रखने के लिए नई सरकार का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि मौजूदा सरकार जातीय छुआछूत और सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए तैयार है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि जातीय समानता सुनिश्चित करने के लिए संविधान और कानूनों के अनुपालन के साथ साथ सामाजिक सुधार भी जरूरी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नेपाल के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राजदूत अब्दुल्ला अल शंसी ने आज शिष्टाचार भेंट की। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई मुलाकात में राजदूत शंसी ने आगामी फरवरी दूसरे हफ्ता दुबई में होने जा रहे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भाग लेने के लिए यूएई के उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रसीद अल मकटूम द्वारा भेजे गए निमंत्रण हस्तांतरण किया। आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान विभिन्न विषय पर चर्चा भी हुई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश में डॉ शंकर प्रसाद शर्मा को भारत और डॉ नेत्र प्रसाद तिमल सिन्हा को मलेशिया के लिए आवासीय राजदूत पद पर नियुक्त किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। सभामुख देवराज घिमिरे ने व्यवस्थापिका की भूमिका को प्रभावकारी बनाने की बात पर जोर दिया है। कास्की के पोखरा में संपन्न 10वें अंतर व्यवस्थापिका सम्मेलन के बारे में जानकारी देने के लिए पोखरा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि सरकार चोरी तस्करी और अपराध नियंत्रण में सदैव कटिबद्ध है। नेपाल प्रेस यूनियन रूपन देही द्वारा आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री लेखक ने कहा कि पिछले समय में नए नए अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और इसके नियंत्रण के लिए सभी को सचेत होने की जरूरत है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने सामाजिक विघटन पैदा करने और चरित्र हनन जैसे अपराधों पर नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। सरकार ने शिक्षक रिक्तियों की समीक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है और काम को आगे बढ़ाया है। विद्यालय शिक्षा विधेयक पर चर्चा के लिए आज आयोजित प्रतिनिधि सभा के तहत शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति की बैठक में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराय ने बताया कि शिक्षक पदों का मिलन कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। त्रैमासिक वेतन पाने वाले शिक्षकों को मासिक वेतन देना शुरू कर दिया गया है। ये जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री भट्टराय ने बताया कि ईसीडी पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए उचित प्रबंधन भी किया जाएगा। मंत्री भट्टराय ने बताया कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय के भूमि विवाद को सुलझाने के लिए गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक हो तो भूमि विवाद को सुलझाने के लिए आगे का अध्ययन और जांच की जा सकती है। नेकपा एकीकृत समाजवादी ने पार्टी में नेताओं की जिम्मेदारी फेरबदल तथा कार्य विभाजन किया है। पार्टी के स्थायी कमिटि बैठक ने कार्य विभाजन में अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व में 24 सदस्यीय केंद्रीय सचिवालय का गठन किया है। ये जानकारी सचिव सोम प्रसाद पांडे ने दी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर में चिकित्सा शास्त्र अध्ययन अंतर्गत स्नातकता MBBS का अध्ययन शुरू हुआ है। ये जानकारी प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉ. अकुर शाह ने दी। परराष्ट्र मंत्री डॉ. राजू राणा देओबा ने सभी समूहों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नारीवादी विदेश नीति पर जोर दिया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में समानता पर आयोजित सम्मेलन के दौरान नारीवादी विदेश नीति पर सत्र के दौरान मंत्री डॉ. राणा ने कहा कि नारीवादी नीति का पालन करना जरूरी है। मंत्री डॉ. राणा ने विचार व्यक्त किया कि समानता की अन्य नीतियों की तरह नारीवादी विदेश नीति भी सद्भाव, समानता और समावेशन को अपनाती है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था PSB के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. महेंद्र विष्ट ने प्रसारण की सामग्री को नागरिक केंद्रित बनाने के निर्देश दिए हैं। आज रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉ. विष्ट ने कहा कि राष्ट्र की जरूरतों के आधार पर दो सरकारी मीडिया रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन को सार्वजनिक प्रसारण संस्था बनाने के लिए विलय कर दिया गया और इसका उद्देश्य लोगों की आवाज को तटस्थ तरीके से आम नागरिकों तक पहुंचाना है। कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. विष्ट ने कहा कि रेडियो नेपाल की आवाज को दूर दराज के लोगों तक अधिक प्रभावी और तटस्थ तरीके से पहुंचाने में PSB की भूमिका अहम होगी। रेडियो नेपाल के नायब कार्यकारी निदेशक खगेन्द्र खत्री ने कहा कि सकारात्मक भावनाओं को विकसित करने और भावनात्मक एकता बनाए रखने से ही सार्वजनिक सेवा प्रसारण को सफल और प्रभावी बनाया जा सकता है। नेपाल टेलीविजन के नायब महाप्रबंधक विष्णुराम न्यौपाने ने कहा कि दोनों संस्थानों के प्रसारण को सार्वजनिक प्रसारण के रूप में प्रमाणित करने के लिए सभी के सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। रेडियो नेपाल के नायब कार्यकारी निदेशक चंद्र भूषण लाल दास ने कहा कि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था को प्रभावी बनाने के लिए सभी को मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. विष्ट ने कल नेपाल टेलीविजन में PSB के सचिवालय में कार्यभार संभाला था। पिछले साल का नाथिकाजी संगीत सम्मान का ऐलान कर दिया गया है। सम्मान 10 स्रष्टा और एक संगीत प्रतिष्ठान को प्रदान किया जाएगा। नाथिकाजी स्मृति समाज द्वारा आज आयोजित घोषणा कार्यक्रम में विभिन्न स्रष्टा संगीतकर्मी और संचार कर्मियों को विभिन्न विधाओं में सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हेटौड़ा से संघीय राजधानी काठमांडू जोड़ने वाली सिसनेरी दक्षिणकाली सड़क में आज से इसी पौ से 11 गति तक यातायात संचालन में रोक लगाई गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर गेटवे ऑफ इंडिया के पास लोगों से भरी एक नाव अचानक पलट गई। हादसा शाम 5:30 बजे के करीब का है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। जानकारी के अनुसार नाव का नाम नील कमल है और ये एलिफेंटा जा रही थी। इसी दौरान उरन कंजारा के पास डूबने लगी। इस नाव में कुल 110 से अधिक लोगों के सवार होने की खबर है। बचाए गए लोगों में 4 की हालत गंभीर है। हादसे के बाद 101 लोगों को बचाया गया है। घटना के तुरंत बाद नाव में सवार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार जातीय छुआछूत और सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का कथन, सामाजिक विघटन पैदा करने और चरित्र हनन जैसे अपराधों को नियंत्रण की जरूरत है। गृहमंत्री रमेश लेखक का कथन, शिक्षक रिक्तियों की समीक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन कर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराय ने दी जानकारी। और भारत के मुंबई में यात्रियों से भरी नाव पलटने से हुई 13 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।